मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 31 अक्टूबर 2016 है, अक्टूबर का आखिरी दिन, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और सच पूछे तो मैं हार्दिक रूप से स्वागत करने के साथ साथ एक और अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा, और वह है कि मैं बहुत बहुत स्नेहिल रूप से आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं नरेंद्र सिंह, आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, अभय सिन्हा, आप लखनऊ से हैं, चंद्र प्रकाश गुप्ता, आप चंदवाजी जयपुर से हैं, रवि शंकर शर्मा, आप फैजाबाद से हैं, और निहारिका चौधरी, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो नरेंद्र, अभय, चंद्र प्रकाश, रविशंकर और निहारिका, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 दिन की इन छुट्टियों ने शायद आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से वे सब जो अपने अपने घरों से बाहर रहकर तैयारियां कर रहे होंगे, चाहे नौकरियां ही क्यों न कर रहे हों, वे सब दिल्ली में, वो सब के सब दीपावली पर अपने घरों को लौटे होंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कि राजा राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर को लौटे थे। तो निश्चित रूप से घर लौटने की यात्रा की थकान, और फिर दीपावली त्योहार भी कुछ ऐसा है कि वो दिन भर आपको कुछ न कुछ थकान दे ही देता है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे बाजार की खरीददारी हो, चाहे दोस्त और संबंधियों से मिलने की बात हो, चाहे पटाखे फोड़ने हो। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 2 दिन की छुट्टियां आपके लिए बड़ी आरामदायक रही होंगी, लेकिन ये जरूर है कि बहुत ही सुखद रही होंगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप लोगों ने दीपावली के अवसर पर मुझे अलग अलग तरीकों से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दीपावली कहीं न कहीं कुछ समुदायों में नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आप इसे किस रूप में लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी मौका मिले कि हम नया कुछ कर सकते हैं, नए की शुरुआत कुछ हो सकती है, अपने अंदर कुछ नयापन ला सकते हैं, नया जोश भर सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप उसे पकड़ लीजिए और नएपन के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। तो आप चाहें तो आप अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को एक नए अंदाज में शुरू करने का एक संकल्प इस नए वर्ष के पहले दिन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर, और हम देखते हैं कल के AIR न्यूज को। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि कल दीपावली की छुट्टी थी, इसलिए आज जहां से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वहां अखबार नहीं आए हैं, भोपाल में आज अखबार नहीं आए हैं, तो हमारे पास आज अखबार नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूज में हमारे पास है कि हम उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स के रूप में मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जो 29 अक्टूबर का है। 29 अक्टूबर का मतलब सैटरडे। मेरे पास चूंकि ये संडे को आया था ये अखबार, एक दिन देरी से आता है, तो ये एकमात्र क्लिपिंग्स आपको पढ़ने को जरूर मिलेगी। मुझे खुशी है कि कम से कम क्लिपिंग्स वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लैंक आज नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज की हमारी जो बातचीत होगी वो पूरी तरीके से रेडियो न्यूज पर आधारित होगी, और रेडियो न्यूज में ऐसी कुछ बातें हैं जिनके आधार पर हम आज अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से और खूबसूरत इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, खबरों के रूप में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी नहीं है, मैं आपका केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली खबर तो यही है कि एशियाई चैंपियन जो हॉकी का है वो खिताब भारत ने जीता है। पाकिस्तान को भारत ने 2-1 जो भी है वो हराया। नो डाउट कि सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो। मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट की ही बात कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट की नहीं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी सूचनात्मक जो खबर थी न्यूज में वो ये है कि 31 अक्टूबर आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और खासकर आपके सिलेबस में भी आप देखेंगे कि आजादी के बाद का जो भारत का जो सिलेबस है उसमें रियासतों का विलीनीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर एक साल क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में। तो ये जो टॉपिक है आपको रियासतों का विलीनीकरण, ये टॉपिक देख लेना चाहिए। मैं इससे पहले भी आपको इसी डेली ऑडियो लेक्चर में बता चुका हूं, और स्पेशली खासकर ज्यादा बेहतर होगा कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार रहे हैं या स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनकी भूमिका रही है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। और वैसे भी पढ़ना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के पहले गृहमंत्री रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता भी रहे हैं। रियासतों का विलीनीकरण छोटी घटना नहीं थी, इसीलिए उन्हें अगर भारतीय नेताओं से उनकी तुलना करेंगे तो कहीं वो चाणक्य के समकक्ष बैठते हैं, और अगर विश्व नेताओं से तुलना करेंगे तो फिर वो बिस्मार्क के समकक्ष जाकर बैठते हैं। हालांकि सच पूछिए तो मुझे लगता है कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी वो बिस्मार्क से थोड़ी सी ज्यादा ही कठिन थी, क्योंकि जब रियासतों के विलीनीकरण की जब बात आ रही थी तो उन रियासतों के पास अपने अपने संवैधानिक आधार थे, क्योंकि जो साइन हुआ था जो विभाजन का, उसमें उनको स्वतंत्र रहने की या कि दोनों भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी एक में विलय होने की स्वतंत्रता दी गई थी। ऐसी स्थिति में उनको भारत में मिला पाना आसान काम नहीं था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह व्यक्तित्व के कारण ही संभव हो सका है। तो बेहतर होगा कि आप सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में उसके बारे में भी कुछ पढ़ लें। इसके बाद जो छोटी सी दो खबरें थी मित्रों, हो सकता है कि कभी किसी और प्रश्न के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकें। आपने देखा कि अमेरिका ने दीपावली के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो कि यूएनओ के ऑफिस को सजाया गया और दीपावली मनाई गई, और पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था ने, जो एक तरह से विश्व संस्था है, उसने दीपावली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। अब ये हालांकि घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, चूंकि भारत की बात थी तो न्यूज में आनी ही चाहिए, और मुझे समझ लगता है कि हम भारतीय इस पर गर्व भी करना ही चाहिए, हमें कर सकते हैं। तो अब आपको देखना यह होगा कि इसका कहां किस तरीके से कब आप किस प्रश्न के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक घटना है, एक सूचना है। कोई ताज्जुब नहीं कि दूसरे एग्जामिनेशन में प्री के क्वेश्चन का ये आधार भी बन जाए, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी इसे जानना बेहतर होगा। मित्रों, अब मैं जिस टॉपिक को लेकर के आज आपसे थोड़ा सा अधिक समय की मांग कर रहा हूं वह है प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था, जब वो आज आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के जो नौजवान जो आर्मी मैन हैं, जो सेना है, उनके बीच में जाकर अपनी दिवाली मनाई, और दिवाली को उन्होंने सेना को डेडिकेट भी किया है, समर्पित भी किया है। उसमें भाषण देते समय उन्होंने कहा था भारत की जो शक्ति है वो विविधता में एकता है, और ये बहुत प्रचलित वाक्य है, आप बचपन से सिलेबस में इसे पढ़ते हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं, और बार बार ये दोहराया भी जाता है, और ये सच भी है। और चूंकि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी क्षमता है, तो इसे दोहराना, इसका उल्लेख बार बार करना कुछ गलत भी नहीं है। तो मित्रों, ये जो विविधता में एकता है, आज मैं चूंकि दूसरे कुछ बहुत विशेष टॉपिक हमारे पास नहीं है, इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ करने का मेरा मन कर रहा है। आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपका मन क्यों कर रहा है इतने घिसे पीटे टॉपिक पर बात करने के लिए। तो मित्रों, मेरा मन इसलिए कर रहा है कि मैं जहां तक समझता हूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, चाहे वो घिसे पीटे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जटिल हों, चाहे महान हों, चाहे बड़े चैलेंजिंग हों, टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट यह होता है कि आप उस टॉपिक को हैंडल कैसे करते हैं, आप उसे किस रूप में लेते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से आप उसके उत्तर दे सकते हैं। नो डाउट कि ऐसे कहेंगे कि विविधता में एकता, तो आपको ये घिसा पिटा टॉपिक लगेगा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, हमारी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, कंपटीशन के लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे डेफिनेटली हमारे इसी टॉपिक पर लिखने की चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। ये चुनौतियां किस तरीके की होती हैं, अब इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सन 2015 के मेंस में, सिविल सर्विस के मेंस में फर्स्ट पेपर, जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मालूम है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें इंडियन कल्चर है, आर्ट लिटरेचर भी है, हिस्ट्री भी है, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा तो नहीं होते लेकिन दो तीन क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते ही हैं। तो उसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया है जिसे आपको 200 शब्दों में लिखना है, 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और इस क्वेश्चन में जो चैलेंज है उस चैलेंज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मैं चैलेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और आप इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। क्वेश्चन है, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। मैं मित्रों आपके हेल्प के लिए इसे इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ए नेशनल आइडेंटिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ नहीं, अगर टॉपिक इसका सेलेक्ट करना आप चाहेंगे कि ये किस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, तो यह टॉपिक है विविधता में एकता और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चैलेंज देखिए, चैलेंज वो दे रहे हैं कि उन 4 एलिमेंट्स और दे ऑल 4 एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद द कल्चरल डाइवर्सिटी। वो कल्चरल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो केवल सांस्कृतिक तत्व होने चाहिए और उन 4 सांस्कृतिक तत्वों को चुनिए जिन्होंने इस देश को एक बनाने में या एकता स्थापित करने में मदद की है और फिर उन 4 के रिलेटिव इवेल्युएशन बताइए, इनमें से किसने कैसे मदद की, किसने ज्यादा की, किसने कम की, किस प्रकार की, आप इवेल्युएट कीजिए। आप देख रहे हैं मित्रों कि नो डाउट कि टॉपिक तो वही है पुराना जो आप 5वीं 4वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां तक आते आते वो टॉपिक कितना चैलेंजिंग हो गया है ये अब आपको यहां दिखाई देगा। मित्रों ये विषय बहुत बड़ा है, उतने डिटेल में जाने की गुंजाइश यहां मेरी डेली ऑडियो लेक्चर में नहीं होती है, लेकिन मैं अपने स्पेशली शायद 3rd, 4th और 5th बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों को खासकर कल्चर, फिलॉसफी, सोसाइटी, रिलीजन, इन सब के मिले जुले रूप के लेक्चर्स प्रोवाइड जब आप क्लास में आए थे तब आप लोगों के लिए कराए गए थे, याद कीजिए आपको याद आ जाएगा। पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी शुरू से लेकर के अभी तक महात्मा गांधी तक की हमारी जो फिलॉसफी रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा जो रिलीजन रहा है, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपसे आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे और वो लेक्चर्स बहुत अद्भुत लेक्चर थे। मैं आपको उस लेक्चर की याद इसलिए दिला रहा हूं कि यदि आप उस लेक्चर को याद कर सकेंगे, रिकॉल कर सकेंगे, और मैं समझता हूं कि 5th बैच के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी तो उनकी क्लास को खत्म हुए जो कुल मिलाकर के 3 सप्ताह ही हुए हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस लेक्चर को रिकॉल करें और उस रिकॉल करने के बाद उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालें ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। आपको बहुत मजा आएगा और आपका एक बहुत अच्छा यूं कह लीजिए कि अभ्यास भी होगा। लेकिन मित्रों, उसमें से आप निकालने की कोशिश कीजिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्लासेस में नहीं आए थे, उनकी मदद के लिए मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा देश विविधताओं वाला है। विविधताओं वाला क्यों है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। विविधताओं को जन्म देने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ज्योग्राफिकल सिचुएशन। जहां भौगोलिक विविधताएं होंगी तो सांस्कृतिक विविधताएं अपने आप होंगी। और भारत एक ऐसा देश है, देखते हैं आप, कि हम उष्ण कटिबंध से लेकर के और शीत कटिबंध तक की जलवायु को कवर करते हैं। अब मैं जलवायु कैसे संस्कृति को जन्म देती है, क्लासेस में तो मैंने यहां स्टूडेंट्स को बताया है, लेकिन यहां मैं बताने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा हूं। तो हमारे जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसने हम में विविधता पैदा की है, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिसने फिर इन विविधताओं के बावजूद हमें एक सूत्र में बांध करके रखा है, जिसे हम एकता का नाम देते हैं। दोस्तों, इशारे के तौर पर ही मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकूंगा। इसका सबसे पहला और जो सबसे शक्तिशाली मैं कहूंगा कि जो तत्व है वो है फिलॉसफी, जो इंडियन फिलॉसफी है। मैं इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं, टू सम एक्सटेंड इसे आप एशियन फिलॉसफी भी कह सकते हैं। यदि आप इसे दूसरा नाम देना चाहें तो आप पूर्वी दर्शन भी कह सकते हैं। जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भले ही गंगा यमुना के मैदानों में ये शुरुआत इसकी हुई हो, लेकिन ये दक्षिण भारत तक के पूरे क्षेत्र में इस फिलॉसफी की गूंज रही है। आप वैदिक पीरियड से लेकर के आप चलेंगे तो आप वैदिक पीरियड को ले लीजिए, आप उपनिषद काल को ले लीजिए, आप पौराणिक समय को ले लीजिए, यहां तक कि फिर आप जब मध्य काल में पहुंचते हैं तो आप शंकराचार्य को ले लीजिए, फिर आप हमारे भक्तिकालीन आंदोलन को ले लीजिए। ये सब इंडियन फिलॉसफी को जीवंत करने वाले तत्व हैं। आपको वेदों में भी वही चीज मिलेगी। अगर उसमें गंगा और यमुना की बात है तो कृष्णा और गोदावरी की भी बात है, यानी कि ज्योग्राफिकली वो कितना कवर कर रहे हैं। शंकराचार्य साउथ में हुए, वो वहां से चलते हैं और आकर के चारों दिशाओं में वो अलग अलग चार मठ स्थापित करते हैं। ये राष्ट्रीय, आप सोच करके देखिए कि वो वहां से ट्रेवल करते हैं और दिशाओं में स्थापित करते हैं। भारत ने शुरू में यात्रा कहा है, वो आज पर्यटन बन चुका है, लेकिन वो उसे प्राचीन काल में यात्रा कहते थे और इस यात्रा का संबंध धर्म यात्राओं से था, तीर्थ यात्राओं से था। तो तीर्थ यात्राओं के दौरान आदमी केवल अपने ही क्षेत्र में नहीं जाता था। साउथ का आदमी नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ का आदमी साउथ जा रहा है, ईस्ट का वेस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद, अलग अलग खान पान भाषा पहनावा होने के बावजूद, उनमें सिंथेसिस की एक बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से वाकिफ हो रहे थे। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी ताकत थी, ये इतनी बड़ी ताकत थी फिलॉसफी में कि अपनी भौगोलिक सीमाओं को भेद कर, उन सारी की सारी दीवारों को तोड़ करके वो पूरी देश में एक जैसी प्रवाहित होती रही है। आप अगर महाभारत के काल को उठा करके देखिए तो आप कृष्ण का गमन देखिए, मथुरा वृंदावन से लेकर के कहां पहुंच जाते हैं, वो द्वारका पहुंच जाते हैं। नॉर्थ से कहां पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट पहुंच रहे हैं। राम क्या कर रहे हैं, उत्तर भारत में जन्म लेते हैं साकेत में, और मध्य भारत से ट्रेवल करते हुए दक्षिण, पूरे दक्षिण भारत तक होते हुए तो रामेश्वरम से ही तो जाते हैं ना वो, और श्रीलंका जाते हैं, तो ट्रेवल कर रहे हैं ना। ये ट्रेवल कैसे हो रही है, एक व्यक्ति की ट्रेवलिंग, याद रखिए कि कहीं कल्चरल ट्रेवलिंग भी होती है। ये मैंने फिलॉसफी की बात कही। दूसरी बात यह है मित्रों की जो मैंने ज्योग्राफी की बात कही, वो भौगोलिक स्थितियां तो अलग है, लेकिन उन भौगोलिक स्थितियों में एक बहुत बड़ी समानता है, मानसून। हमारे देश की कृषि व्यवस्था शुरू से मानसून पर आधारित रही है, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी हो। तो मानसून के कारण वो जो हमारी खान पान उन सब में, वेजिटेशन में आप कह लीजिए कि काफी कुछ समानता मिलती है। तीसरी जो है दोस्तों कि भारत भले ही आज आप मतलब अंग्रेजों के समय में 570-80 रियासतों में आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमारे यहां एम्परर रहे हैं, सम्राट रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं, जो आज से 2300-2400 साल पहले ही हमें मौर्य साम्राज्य के रूप में पहला मिलता है, फिर गुप्त साम्राज्य के रूप में मिलता है, फिर मुगल बादशाहों के समय में मिलता है। तो आखिर में उस समय एक ऐसी शक्ति थी, पॉलिटिकल पावर थी, जो पूरे के पूरे भारत को एक किए हुए थी। फिर उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक होता है, सब एक राजा के नाम से जाने जाते हैं, एक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो वहां भी एक एकत्व की भावना आती है, वहां भी फिर मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप चौथी और आखिरी बात जो मैं कह के खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, आप दीपावली के त्यौहार से अभी फुर्सत पाए हैं, आप कभी दीपावली के त्यौहार को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। एक गजब का सिंथेसिस वाला त्यौहार है, जिसमें पता नहीं कितनी मान्यताओं का इसमें समन्वय है। आप देखिए कि भारत का जो रिलीजन है इतना डेमोक्रेटिक रिलीजन है जो अपने अंदर सबको समा लेता है। आप भगवान को मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तब भी ठीक है, बौद्ध नहीं मानते ठीक है आप भी हिंदू हैं, आप मानते हैं ठीक है आप भी हिंदू हैं, आप सगुण परंपरा के हैं कि भगवान का रूप होता है आप भी भारतीय हैं, आप कहते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं होता ठीक है आप भी भारतीय। आप देख रहे हैं इतने सारे देवी देवता इस बात को प्रूव करते हैं कि भारत रिलीजन के मामले में भी कितना उदार रहा है। आप अपना अपना भगवान बना लीजिए, हमारे गांव में सबके अपने अपने ग्राम में देवता हैं, आप बना लीजिए ना अपना भगवान, पूजा करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो संस्कृति इतनी ज्यादा सामंजस्य को लेकर के चले, या यूं कह लीजिए कि जो धर्म जिस धर्म में इतनी ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत हो, बचाने की ताकत हो, तो वो तो एक कर ही देगी सबको। आप आइए ना, आप आइए हमारे यहां रहिए मिलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक तो सब हो ही जाएंगे। तो ये चौथा और महत्वपूर्ण तत्व रहा है दोस्तों, जिसने भारत में भारत की विविधता में एकता को स्थापित किया है। मित्रों, इसको हम बहुत गंभीरता से जब आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए तैयार हो सकता है। चूंकि आपके सिलेबस में है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक आप इस टॉपिक को लें, और जिस चार पांच एंगल से मैंने अभी आपको इस पर सोचने की बात कही है उस तरफ जब सोचेंगे तो एक बहुत अच्छा ऐसे भी आपका तैयार होगा, और जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का जो मेंस का है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसमें से बहुत से मेल हैं जिन्होंने अपने चेंजेस के बारे में लिखे हैं, जो हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट हैं। इसमें दो दोस्तों के मैं नाम स्पेशली मेंशन करना चाह रहा हूं, उसमें श्याम जांगिर और रंजीत रंजन जो पटना से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम और रंजीत की, आप लोगों ने यहां से क्लास में जाने के बाद अपने अंदर बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, आपने हम लोगों को सूचित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जिन दोस्तों ने भी मेल लिखे हैं उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं। वह है किशन मेवाड़ा पालीताना गुजरात से, गौरव शर्मा, काजल भारती पटना से, इरशाद अहमद सैफी मुंबई से, शालिनी पांडे, फिर है हमारे शीबा नसीम न्यू दिल्ली से, लुभना डोंगरे, अभिषेक वर्धन सिंह लखनऊ से, अंतरिक्ष अग्रवाल खतौली उत्तर प्रदेश से, गौरव सिन्हा पूर्णिया बिहार से, और पी वेंकटरमन विजयनगर आंध्र प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।